हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हनुमान जी का दिव्य चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। जब हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने लंकिनी को तमाचा मारा, लंकिनी वहीं गिर गई और फिर हनुमान ने अंदर प्रवेश किया। उन्होंने अपने लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया और बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप धारण किया और हवा में उड़ते उड़ते वो सब जगह सीता की खोज करने लगे। रावण के महल में भी गए और अनंत स्त्रियों को रावण के साथ सोते हुए देखा, लेकिन उनका ये अंदाज था कि यहीं कहीं सीता देवी होगी। लेकिन फिर उनको लगा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं इतनी सारी सुंदर स्त्रियाँ एक पुरुष के साथ सो रही हैं, मुझे वहाँ दर्शन नहीं करना चाहिए, वहाँ से वो निकल गए। फिर आगे जाकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन किया, प्रभु राम ने उनको अपनी मुद्रिका दी थी, तो वृक्ष पर बैठकर उन्होंने राम कथा सुनाना आरंभ किया। वो इतने चतुर और बुद्धिमानी थे, उनको पता था कि सीता देवी ने मुझे तो कभी देखा नहीं है और मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, तो मैं वानर हूँ और वो राक्षसों के बीच में बैठी हुई है और राक्षस हमेशा उनको धमकी देते रहते हैं और विविध प्रकार के रूप धारण करके उनको धमकाते रहते हैं, और अगर मैं इस रूप में सीधे उतर गया उनके सामने तो उनको लगेगा कि कोई राक्षस ही वानर का भेष बदलकर मुझे धमकाने के लिए आया है। इसलिए उन्होंने विचारपूर्वक प्रभु राम की कथा कहना आरंभ किया। पेड़ पर बैठकर जिसके नीचे सीता देवी विराजमान है उसी पेड़ के शाखा पे बैठकर उन्होंने प्रभु राम का चरित्र गाना शुरू किया, तो सीता को पूर्णता अवगत था। और वो कथा को बहुत देर सुनाने के बाद में सीता के मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ कि राम के चरित्र का वर्णन करने जैसा व्यक्ति यहाँ पर कौन है। तो एक तरह से वो व्यक्ति जो राम की कथा का वर्णन कर रहा था उसके प्रति सीता देवी के मन में एक स्थान पैदा हो गया, अनुकूल स्थिति पैदा हुई। फिर हनुमान जी ने छलांग लगाई, जब सीता देवी ने आवाज़ दी कि आप कौन हैं जो मेरे प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, तो जब ये अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई तब हनुमान जी छलांग लगाई और सीता देवी के सामने प्रकट हुए, फिर अपना परिचय दिया और आगे जाकर अपना परिचय दृढ़ करने के लिए उन्होंने राम की मुद्रिका उनको प्रस्तुत की। फिर पूरा विश्वास हो गया कि ये प्रभु राम के ही दूत हैं और कोई राक्षस नहीं है जो भेष बदल कर आए हैं। फिर हनुमान जी ने कहा कि हम आपको अभी हमारे कंधे पर बिठाकर हवाई मार्ग से प्रभु राम के पास ले जाते हैं। लेकिन सीता देवी का जो परम सुंदर परम पवित्र चारित्र है, पतिव्रत चारित्र है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर होता है। सीता देवी हनुमान को कहती है कि मुझे रावण ने बलपूर्वक स्पर्श करके लाया था, मैंने इच्छा से उसका स्पर्श नहीं किया था, मेरे ऊपर बल का प्रयोग किया गया था और मुझे उठाकर उसका स्पर्श को ग्रहण करते हुए मुझे आना पड़ा, लेकिन मैं पतिव्रता नारी हूँ और स्वेच्छा से मैं किसी परपुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए आपके कंधे पर नहीं बैठ सकती। मेरे प्रभु राम जब भी आएंगे मुझे पूरा विश्वास है कि वो स्वयं आएंगे और मेरे शत्रु का जिन्होंने मुझे उठाकर यहाँ पर लाया है, अपहरण किया है, उसका नाश करेंगे, तब तक मैं इंतज़ार करूँगी। तो हनुमान जी तो बड़े उत्सुक थे, में बल था, शक्ति थी, बुद्धि थी, वो सोच रहे थे कि इसी समय समस्या को समाधान किया जाए, लेकिन सीता देवी के इस परम चरित्र को देखकर वो प्रभावित हुए, उनके चरणों को वंदन किया। और फिर जब वापस जाने का समय हुआ तो वो सोचते हैं कि अरे लंका में आई है, आ ही गए हैं तो लंका का अवलोकन किया जाए, इसके मजबूत स्थानों का दर्शन किया जाए, इसकी कमजोरियां ढूंढ ली जाए, रावण कौन है उसका दर्शन किया जाए, रावण की सेना कौन है, रावण के प्रधान सैनिक कौन है, अधिकारी कौन है, बलशाली कौन है, उसका दर्शन करके जाए तो आगे जाकर युद्ध होने वाला है तो पता करेंगे उसको। तो उन्होंने अशोक वाटिका को ध्वंस करना शुरू कर दिया। अशोक वाटिका आज के तारीख में भी एक बहुत सुंदर स्थान श्रीलंका में, जो रावण के मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि स्वर्ग के देवता भी, इंद्र भी उनके लिए लालायित थे, मोहित थे, लेकिन रावण खुद उसमें आनंद लेता था। ऐसा सुशोभित वन जो फल फूल नदी नाले बगीचे उपवन से समृद्ध था, उसको ध्वंस करना शुरू किया। पेड़ों के फल खा खा कर उसको ध्वंस करना शुरू किया। मानो कुछ ही क्षणों में अशोक वाटिका की शोभा नष्ट हो गई। द्वारपालों को मार दिया गया हनुमान जी द्वारा। द्वारपाल भाग के गए और एक एक करके रावण के पुत्र आए। अकबन का वहां पर वध किया गया और रावण के दरबार में खबर आ दी गई, अरे ये हुआ, पर ये भी, इसकी भी मृत्यु हो गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। बहुत बलशाली राक्षसों का वध किया गया रावण हनुमान जी के द्वारा। सब रावण के सभा में सोच रहे हैं, अरे बंदर आके रावण के श्रेष्ठ वीरों का नाश कर रहा है, अशोक वाटिका का विध्वंस कर रहा है। फिर रावण बहुत तिमिला उठते हैं, बोलते इंद्रजीत जाओ, देखो कौन सा बानर आया है, एक क्षुद्र बानर हमारे अशोक वाटिका का नाश कर रहा है। तो फिर मेघनाद वहां पर आते हैं, इंद्रजीत रावण के ज्येष्ठ पुत्र, और देखते हैं कि ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है, इसने कई राक्षसों का वहां पर वध कर दिया है और आराम से बैठकर फल खा रहा है। कोई त्रस्तता नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, शांति से सब काम कर रहा है। तो उसका और हनुमान जी का भी युद्ध होता है और उसके युद्ध कौशल बल को देखते मेघनाथ प्रभावित होता है, एक वानर में इतना बल। तो फिर वो सोचता है कि इसे मारना नहीं चाहिए, इसको कैद करना चाहिए। तो ब्रह्मास्त्र भेजते हैं। आप सोच सकते हैं जो ब्रह्मास्त्र बहुत भयंकर तीव्र युद्ध में उसका उपयोग करते हैं, उस ब्रह्मास्त्र को भेजते हैं। तो हनुमान जी ब्रह्मा जी को उस अस्त्र पे देखते हैं, ब्रह्मा जी का मंत्र गाया जा रहा है, तो उसको वो प्रणाम करते हैं। वास्तवता ये थी कि ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी को बांधने में समर्थ नहीं है, लेकिन हनुमान जी नम्र हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं कैदी बनकर इनके साथ जाऊंगा तो मुझे अनायास ही रावण के दरबार में प्रवेश मिलेगा, फिर कष्ट करके दरवाजा तोड़ के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये कैदी बनाकर अपने आप ले जाएंगे। तो अपने आप जिस कार्य के लिए सब कुछ कर रहा हूँ अपने आप हो रहा है, तो ये दूसरा कारण था, इसको कूटनीति युद्ध कौशल कहते हैं। तो समय पर कैद हो जाना भी एक युद्ध की नीति है, हारते हुए नजर आना भी युद्ध की नीति है ताकि शत्रु गाफिल रहे। तो ब्रह्मास्त्र में वो बन जाते हैं ब्रह्मपाश में, उसको बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाया जाता है। तो यहाँ पर हनुमान जी के साहस का एक दिव्य उदाहरण प्राप्त होता है। हनुमान जी सबके बीच में जब बैठने का समय आता है तो वो कहते हैं कि मैं आपके दरबार में आया हूँ, मुझे आसन दीजिए, मैं श्री राम का दूत हूँ। तो उसका अपमान करते हैं, वो कोई आसन नहीं देंगे। तो हनुमान जी अपनी पूंछ को इतना बढ़ाते हैं और गोल गोल घुमाकर उसका ही आसन करते बना देते हैं और रावण से भी ऊंचा उस आसन को बनाकर उसमें बैठ जाते हैं पद्मासन में। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बड़ा अद्भुत वानर है। और वहां पर वो सारे रावण के सेनापतियों का अवलोकन करते हैं और रावण को चेतावनी देते हैं कि मैं तो केवल प्रभु राम का दूत हूं, मैं तो केवल दास हूं, अभी तो प्रभु को आना है। जो मैंने किया है उससे करोड़ों गुना अधिक पराक्रम मेरे प्रभु दिखा सकते हैं। इसलिए रावण तुमने कायर का कार्य किया है, तुमने परस्त्री को छीन कर अपहरण करके लाया है, बेहतरी इसमें है कि तुम सीता जी को वापस कर दो और अपने कुल का विध्वंस को आप टाल सकते हो, नहीं तो आप परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि एक वानर के मुख से ये वाक्य आ रहे हैं, रावण के अहंकार को और चोट पहुंचती जा रही है, रावण का क्रोध बढ़ता जाता है। रावण को आखिरी बार वो चेतावनी देते हैं, मैं आखिरी बार आपके हित की बात कर रहा हूं, आप जितना अपने बल के विषय में सोचते हो उसकी कई गुना अनंत गुना बल प्रभु राम में है, इसलिए इस विवाद को यहीं पर मिटा दो। लेकिन रावण कहता है नहीं। फिर उसको बताते हैं कि अरे रावण बंदर को अपने पूंछ पर बड़ा गर्व होता है, इसके पूंछ को आग लगाई जाए, थोड़ा मजाक किया जाए, इसका अपमान किया जाए। तो उपवन में ले जाकर ईंधन डालकर कपड़े बांधकर रावण की आज्ञा के अनुसार मेघनाद और सब मिलकर रावण हनुमान जी के पूंछ को आग लगा देते हैं। सब खबर जो है वो सीता देवी को पहुंच रही है। उस समय सीता देवी प्रार्थना करती है, हे अग्निदेव, मेरे पुत्र हनुमान के पूंछ पर आप जब अग्नि रूप में विराजमान होंगे, ज्वाला रूप में विराजमान होंगे, कृपा करके आपकी आँच हनुमान जी पर नहीं आने देना। इसलिए पूंछ तो उनकी जल रही थी, लेकिन हनुमान जी को अग्निदेव के आशीर्वाद से उस ज्वालाओं की आग का आंच का परिणाम नहीं हुआ। और जब तक वो आग लगा रहे थे तब तक हनुमान जी बंदी के रूप में खड़े थे। जैसे ही आग लग गई तो ऐसे झटका दिया उन्होंने, तो सारे बंदी बनाने के लिए जो दोरिया बांध के रखे थी वो सब टूट गई और वो झटके से सारे राक्षस दूर फेंके गए और ऐसे छलांग लगाई विराट रूप धारण करके। फिर इस महल से उस महल, उस महल से उस महल, इस महल से उस महल, इस उपवन से उस उपवन में सभी लंका को उन्होंने आग लगा दी। देखते देखते कुछ ही क्षणों में सारी लंका आग की ज्वाला में लपट गई। रावण छत पे आया और देखने लगा पूरी सोने की लंका जल रही है और वो कुछ नहीं कर पाया। हताश होकर फिर लंका को जलते हुए देखते रहा। सारे राक्षस लोग छत पे इकट्ठा हुए और रावण के साथ में हनुमान ने किया हुआ ये जो आग आतंक है उसको सब देखते रहे, अग्नि आतंक को। फिर पूरी लंका को ज्वलन करके दहन करने के पश्चात हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई, अग्नि को बुझाया और फिर आकाश में उड़ते हुए लौट के आ गए। अपना सारा पराक्रम जो है उन्होंने वृत्तांत प्रभु राम को सुनाया, जो हिंदी महासार के उस तरफ थे। तो ये जो हनुमान जी का कार्य है कि उनका तो बताया हुआ कार्य था सीता को ढूंढकर ये मुद्रिका देकर संदेश देना है कि हम आ रहे हैं, निश्चिंत रहना। उसके पश्चात जो उन्होंने कार्य किया वो एक परम श्रेष्ठ सेवक का लक्षण दिखाता है। परम श्रेष्ठ जो सेवक होता है वो केवल बताया हुआ काम नहीं करता है, अपने प्रभु के हित में जो जरूरी है वो खुद की बुद्धि से सोचकर करता है। एक भेंट लंका को दे ही रहे हैं तो पूरी लंका की जो कमजोर और मजबूत स्थितियां, सभी सेनाओं का वर्णन, सभी मजबूत स्थानों का वर्णन सब जाकर प्रभु राम को बताते हैं, क्योंकि आगे युद्ध तो होने वाला है। ऐसे हनुमान जी दासता में सर्वश्रेष्ठ दास है। स्वामी का हृदय जानते हैं, स्वामी को क्या अच्छा लगेगा, स्वामी के लिए क्या करना होगा, ये खुद के बुद्धि से भी जानते हैं। उसके बाद में हनुमान जी का जो सहभाग है वो द्वारका लीला में भी है, महाभारत के समय भी है, जगन्नाथपुरी में भी है। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, ऐश्वर्यपूर्ण हैं, तो राधा रानी लक्ष्मी का रूप धारण करके वहाँ पर निवास करती हैं। लक्ष्मी जी वहाँ पर पूरी रसोई संभालती हैं और जगन्नाथ जी को भोजन खिलाती हैं। तो जब जगन्नाथ जी और लक्ष्मी जी एकांत में बैठते थे, क्योंकि जगन्नाथपुरी का पूरा निवास स्थान जो है प्रभु का जो मंदिर है आज के तारीख में, और उस जमाने में भगवान का जो निवास स्थान था वो भी आज का मंदिर है, वो समुद्र किनारे हैं, बहुत ही पास में है, तो समुद्र की बहुत भयंकर लहरों की आवाज़ जो है वो उस जगह पर पहुंचती थी और प्रभु के एकांत में बाधा लाती थी। तो प्रभु को हर बार उस लहरों की आवाज़ से लक्ष्मी के साथ में एकांत में वार्तालाप करना कठिन हो गया। तो प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान जी मुझे जब मैं एकांत में रहता हूँ तो मुझे ये लहरों की आवाज़ नहीं चाहिए, बंद कर दो इसको। तो हनुमान जी प्रभु के महल के समुद्र की ओर जो द्वार था वहाँ पर जाकर अपना कान उस दिशा में करके बैठ गए। उस वहाँ से आते हुए सारे ध्वनि को अपने कान में एकत्रित कर दिया और आगे जाने से रोक दिया। उससे इतने भयंकर ध्वनि को जब फैला हुआ है तो ठीक है, लेकिन एकत्र करके जब उसको लाया गया और कान में एकत्रित किया गया तो कान का पर्दा फट गया, क्योंकि प्रभु के लिए हनुमान जी ऐसे बैठे रहे, तो उनका नाम पड़ा कान फाटा हनुमान। आज भी उनका विग्रह उस द्वार के पास में है और उनकी कान उस द्वार की ओर है और वो समुद्र की सवारी ध्वनि ले रहे वहाँ पर अपने कान में आकर्षित कर रहे हैं। और अद्भुत आश्चर्य है कि वहाँ से आगे समुद्र की लहरों की एक भी आवाज़ पूरे जगन्नाथपुरी के मंदिर में कहीं भी सुनाई नहीं देती है। और वास्तव यह है कि वो मंदिर साक्षात समुद्र किनारे हैं। ये अद्भुत चमत्कार पूरे जगन्नाथपुरी के मंदिर में ध्वनि लहरी समुद्र की आवाज़ की कहीं भी नहीं आती है। उसके बाद में एक बार जगन्नाथ जी को हनुमान जी को मिलने का मन हुआ तो उन्होंने स्मरण करके हनुमान को बुलाया, हनुमान जी आ जाओ हमें आपसे मिलना है। तो हनुमान जी आने लगे, जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया तो ये चक्र जो है सुदर्शन चक्र वो बार बार उनको रोकने लगे, उनके रास्ते में अवरोध आने लगे। तो हनुमान जी ने प्रभु को पुकारा, प्रभु आप तो बुला रहे हैं लेकिन आपका सेवक मुझे रोक रहा है। तो अचानक जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ उन्होंने हनुमान जी के कंधे पर 4 सुदर्शन चक्र निर्माण किए और सुदर्शन चक्र एक उनको रोकने का प्रयास करे थे। जब देखा कि 4 चक्र उनके कंधे पर प्रकट हो गए, उनका तेज से सुदर्शन चक्र का तेज निस्तेज हो गया, जैसे दिखाई देना ही बंद हो गया, तो 4 चक्र का प्रभाव देखकर ये चक्र जो थे मूल सुदर्शन चक्र, वो बड़े नम्र हो गए, उन्होंने रास्ता दिया, फिर वो जाकर हनुमान को मिले, फिर जाकर वो हनुमान जी भगवान को मिले। तो उस हनुमान का नाम है चारी चक्र हनुमान। प्रभु को मिलने की उत्सुकता, उसमें कोई बाधा आए तो उसको नष्ट करने के लिए उत्सुकता, प्रभु को पुकार कर प्रभु ने उन पर आशीर्वाद देकर 4 चक्र धारण करा दिए। आज भी हम उसी द्वार पर जहाँ कान फाटा हनुमान जी का विग्रह है, उसके सामने ही चारी चक्र हनुमान का विग्रह है। उन पर वस्त्र डालकर रखते हैं, वस्त्र निकालने के बाद 4 चक्र का दर्शन होता है और हनुमान जी की सेवा भाव का वहाँ पर प्रकट है। फिर जगन्नाथपुरी में और एक हनुमान जी का अद्भुत लीला है। जगन्नाथपुरी में समुद्र है, बड़ा अकराल विकराल समुद्र है, बहुत जोरदार लहरें आती है उसकी और किनारे को आघात करती है, और अक्सर सदैव नित्य रूप से समुद्र जो है वो पदाक्रांत करता था जगन्नाथपुरी के क्षेत्र को और जगन्नाथपुरी में हाहाकार मचा देता था, मानो समुद्र को बाढ़ आ रही है और समुद्र जो है वो जमीन पर आकर अपनी सीमा को लांघ कर पूरे जनजीवन को दुरुस्त कर रहा है, बुरा कष्ट दे रहा है। तो सारी प्रजा जो जगन्नाथ जी के सामने त्राही त्राही माम करके पुकारते हुए, प्रभु बचाइए ये हनुमान जी, ये जो समुद्र है वो बलपूर्वक हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, हमारा जीवन को कष्ट दे रहा है, बचाइए। तो प्रभु को पता था कि हनुमान जी को समुद्र डरते हैं, हनुमान जी के बल को देखकर समुद्र पीछे हट जाएंगे, तो उन्होंने हनुमान को पुकारा और आदेश दिया कि हनुमान जी आप यहाँ खड़े हो जाओ समुद्र किनारे और समुद्र को अपनी सीमा से आगे आने को रोको। तो हनुमान जी वहाँ खड़े हो गए कमर पर हाथ रखते हुए। हनुमान जी को उपस्थित देखते हुए समुद्र पीछे हट गए और आगे कभी समुद्र की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। हनुमान जी वहाँ खड़े हैं, अभी अब कुछ काम तो है नहीं, खाली खड़े रहना है। तो जो व्यक्ति दासता में इतना व्यस्त रहता है, दास तो हमेशा सेवा करने में मस्त व्यस्त रहता है। तो कुछ समय हो गया तो हनुमान जी को बड़ा आलस आने लगा, यहाँ पर तो कुछ काम ही नहीं है, कुछ खड़े रहना है, द्वारपाल की सेवा कैसे होती है, खड़े रहना है, कुछ करना तो नहीं है, देखना है खाली। तो देख रहे हैं समुद्र अपनी जगह पर है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही आगे, सब कुछ ठीक ठाक है। वो बड़ी वो क्या है जगन्नाथपुरी में वो खिचड़ी प्रसाद हनुमान को खिलाते थे, वो जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का बड़ा महत्व है, तो वो रोज भोजन के रूप में खिचड़ी खिलाते थे चावल दाल की। तो हनुमान जी को बड़ा लगा कि यहाँ पर तो दावल चावल दावल दावल चावल दाल खाना है, तो सब कुछ ठीक ठाक तो है और दिन में ठीक है रात्रि में भी ठीक है। एक दिन सूर्यास्त होते ही एक छलांग लगाई और सीधे अयोध्या में गए, सीता देवी को मिले। मैया वो देर से वहाँ जगन्नाथपुरी में खड़ा हूँ, वहाँ पर दाल चावल खिलाते हैं, बड़े आपके हाथ के पकवानों की याद आ रही है, मैया कुछ खिला दो बढ़िया से। तो बहुत दिनों बाद पुत्र के दर्शन हुए हनुमान जी के, वात्सल्य भाव था हनुमान के प्रति, तो सीता मैया ने उनके बहुत बहुत सुंदर प्रेम से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिला दिए और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने के बाद संतुष्ट हो गए और लौट के आए। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने छलांग लगाया था, समुद्र ने पूरा सीमा लांघ कर जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया, रात्रि के समय सब हाहाकार मचा दिया, अंधकार में तो और अधिक हाहाकार का अनुभव होता है, सब प्रजा त्राही त्राही मार करके जगन्नाथ जी के पास पुकारने गई, जगन्नाथ जी विश्राम कर रहे थे। उतने में सुबह हनुमान जी ने छलांग लगाई और जैसे छलांग लगाई तो तुरंत समुद्र भाग कर पीछे चला गया। तो भगवान ने हनुमान जी को पूछा, अरे आपको सेवा दी थी आप कहाँ चले गए, क्या करें प्रभु आपके राज्य में तो केवल चावल और दाल मिलता है, मुझे सीता देवी के हाथ के मिष्टान्न की याद आई, मैंने कहा सब कुछ ठीक है तो मैं जाके आया। तो फिर बड़े प्रेम से जगन्नाथ जी ने कहा कि इनको बांध के रखो। तो जगन्नाथपुरी के निवासियों ने समुद्र किनारे इनके पैर पर बेड़ियां लगाई और उनको बांध के रखा। आज भी आप हम जाएंगे समुद्र किनारे जगन्नाथ जी के धाम में तो ये बेड़ी हनुमान आपका स्वागत करेंगे और वो बेड़ी हनुमान को धोती पहनाई है, थोड़ा सा पुजारी ऊपर करके देखेंगे दिखाएंगे तो वो जो बेड़ी से उनके पैरों को बांध के रखा है उसका दर्शन होगा। बड़े प्रेम की लीला है भगवान की, हनुमान जी की भी प्रेम की लीला है। जगन्नाथ जी पर प्रेम है उनका, जगन्नाथ जी का उन पर प्रेम है, तो उनकी सेवा में जगन्नाथ जी ने उनको लगा दिया है और अपने समुद्र के किनारे खड़ा कर दिया है समुद्र को रोकने के लिए। आज तक के इतिहास में समुद्र ने कभी भी वहां पर प्रवेश नहीं किया है। फिर द्वारका में भी उनका सुंदर सहभाग है लीला में। अभी हम सोचेंगे कि अरे वो द्वारका में भी द्वापर युग में कैसे आए, इसका कारण यह है कि जब प्रभु रामचंद्र का अंतर्धान होने का समय आया तो सभी लोग उनके साथ साकेत अयोध्या धाम चले गए। हनुमान जी की बारी आई साथ चलने की तो प्रभु ने कहा कि आपको नहीं आना है। जिस विमान पर सारे लोग बैठकर प्रभु के साथ में धाम का गमन कर रहे थे तो प्रभु जी ने हनुमान को रोक लिया और कहा हनुमान आपको इस विश्व में रहना है और जब तक रामलीला चलती रहेगी तब तक आपको वहाँ पर प्रकट होना है और सुनना है और जब तक आप हैं तब तक आपको राम की लीला का कथन करना है। इसलिए हनुमान जी एक चिरंजीवी जीव हैं, उनको चिरंजीवी होने का वरदान प्रभु राम से मिला है। आज भी वो हमारे विश्व में उपस्थित हैं और ये श्रद्धा लोग रखते हैं कि जहाँ पर भी प्रभु के लीला का वर्णन होता है, रामलीला का वर्णन होता है, वहाँ प्रत्यक्ष हनुमान जी विराजमान रहते हैं। हो सकता है हमें दृष्टि में नहीं आए लेकिन हनुमान जी वहाँ प्रकट रहते हैं, उनका सान्निध्य प्राप्त होता है जहाँ राम जी का गुणगान होता है। तो इसी रूप में फिर वो त्रेता से आगे बढ़कर द्वापर युग आया, उसमें भी विराजमान है। तो एक बार द्वारकाधीश कृष्ण को ये अनुभूति हुई कि मेरे तीन प्रधान भक्त जो हैं उन्हें गर्व हो रहा है। वो तीन प्रधान भक्त कौन है? एक है गरुड़ जी, उनकी गति की तुलना कोई देवताओं में भी नहीं कर सकता है। ऐसा कोई गतिमान पक्षी या प्राणी नहीं है जो गरुड़ से मुकाबला कर सकता है गति के विषय में। तो अपनी तेज गति के विषय में थोड़ा थोड़ा अहंकार गरुड़ को होने लगा था। फिर है सुदर्शन चक्र, ऐसा अस्त्र है भगवान का कि आज तक किसी अस्त्र ने उसकी तोड़ नहीं दी। कोई भी अस्त्र को प्रभावित रूप में वो चक्र को परास्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं जो चक्र के सामने विजयी हो। चक्र अंतिम अस्त्र है, सुदर्शन चक्र। तो अपने अजेय होने पर चक्र को गर्व होने लगा और उसके बाद में उनकी पटरानी 16108 रानियों में श्रेष्ठ रानी भाग्य लक्ष्मियों की भाग्य लक्ष्मी श्री रुक्मिणी देवी, उनको अपने सौंदर्य पर गर्व हुआ। उनको लगा कि इतनी सारी पत्नियों में वो मुझे सर्वश्रेष्ठ पटरानी के रूप में पसंद करते हैं क्योंकि मेरा सौंदर्य ही ऐसा है, तो अपने सौंदर्य पर उसको गर्व हुआ। अभी प्रभु का ये स्वभाव है कि वो अपने प्रियतम जनों के अंदर अभिमान अहंकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इंद्र को अहंकार हुआ तो उन्होंने भी बड़े दिव्य तरीके से उसको नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से अपने भक्त पर जिन पर वो प्रेम करते हैं, जो उनके श्रेष्ठ भक्त हैं, उन पर लवलेस मात्र भी अहंकार होगा प्रभु को बहुत पीड़ा होती है और वो दिव्य लीला के माध्यम से अपने भक्तों का अहंकार नष्ट करके दोबारा उनको स्वयं के लिए अति प्रिय बना देते हैं। तो इन तीनों का गर्व हरण करने के लिए जब उन्होंने कुछ योजना बनाई तो उनको केवल हनुमान की स्मृति आई। हनुमान जी के ही स्मृति से उन्होंने सोचा कि यही योग्य व्यक्ति है तीनों का अहंकार नष्ट करने के लिए। तो उस समय स्मृति हनुमान जी की करके मन में भाव से हनुमान को उन्होंने पुकारा कि आओ हनुमान, द्वारका के सीमा के बाहर जो जंगल है वहां पर आके विराजमान हो, मुझे आपसे मिलना है, लेकिन जब तक मैं नहीं पुकारूं तब तक आप वहीं रहो। ऐसे मन से संकेत दिया, हनुमान जी जहां पर भी थे वहां से द्वारका के सीमा पर आ गए। तो यह कथा हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे।